Assalamu alaikum. Hello, 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 and good morning. Subah bakhair, khush aamdeed, and welcome back to the Dasudar Tareen Show in Pakistan, jiska naam hota hai Coffee Mornings with Salmeen Ansari. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. दो तारीख है आज जून की, इज द 2nd of June. फ्राइडे का दिन है, जुमे का मुबारक दिन है, तो जुमा मुबारक टू ऑल दोस पीपल हु ऑब्जर्व इट. आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल दिस मॉर्निंग या नाइट टाइम. आप जहां भी हैं, आप जो भी हैं, उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए, अल्लाह ताला सबके लिए आसानी अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. भाई ये बात काफी हद तक इस्टैब्लिश की जा चुकी है कि फियर की वजह से इंसान ऐसी चीजें कर जाता है कभी कभी, वो इनफरादी तौर पे हो या वो एक ग्रोह के तौर पे हो, एक कम्युनिटी के तौर पे हो या एक नेशन के तौर पे हो, एक पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री के तौर पे हो, कि जब डर होता है किसी चीज का तो वो डर आपको आपके ऊपर ऐसा इस हद तक भी हावी हो सकता है कि आप बहुत सारी ऐसी चीजें करने लगते हैं जो कि शायद आपकी वैल्यू सिस्टम का हिस्सा ना हो, लेकिन आपका डर का जो परला है दैट इज हैवियर देन योर ओन वैल्यू सिस्टम. उसका यह मतलब नहीं होता कि इकदार बुरे हैं या कमजोर हैं, लेकिन डर एक ऐसी चीज है जो इंसान को कभी कभी ऐसी सिचुएशन में ले आती है कि आप जो जिस चीज का चुनाव करते हैं वो आपको वो भूलने पे आपको मजबूर कर देती है कि अच्छा आपका कोई और इकदार भी है. बिकॉज हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जिंदगी में और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हम क्या कहते हैं बरतरफ नहीं हो सकते. सो आई फील दैट वन ऑफ द रीजंस व्हाई देयर इज सो मच हेट इन आवर कंट्री इज बिकॉज ऑफ फियर. अब फियर का मतलब डर जाना नहीं होता है नेसेसरली, यानी घबराहट और डर जाना का ये मतलब नहीं होता कि ओह माय गॉड पता नहीं क्या होगा. डर उस सेंस में भी होता है कि हमसे ना छिन जाए या हमारी बारी आएगी तो फिर क्या होगा, ये वाली जो एक सोच होती है जो कि गुस्सा इवोक करती है. और गुस्से का कोई हद नहीं होता ना, और वो नफरत की शक्ल ले लेता और फिर नफरत की भी कोई हद नहीं होती है. तो इसी से मुतालिक मैं आज आप लोगों से सवाल पूछ रही हूँ कि हमें एक बहुत ही मेहमान नवाज मुल्क समझा जाता था, शायद अभी भी समझा जाता हो जो लोग यहां से होके गए हैं, लेकिन नफरत इतनी ज्यादा है और वो अनफॉर्चुनेटली मीडिया और सोशल मीडिया चूंकि इस चीज को कवर कर रही है बहुत एक्सटेंसिवली पिछले 1.5 साल से जो हो रहा है और पिछले 1 माह से जो हो रहा है पाकिस्तान में खास तौर पे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे आप इत्तेफाक करते होंगे, बहुत सारी चीजें जिनको से आप इत्तेफाक नहीं करते होंगे, लेकिन शायद ही कोई शख्स हो जो कि डिनाई करे कि नफरत बहुत ज्यादा नजर आ रही है उभर के लोगों में. जिस तरह की गुफ्तगू लोग नहीं कर रहे हैं, जिस तरह की बस बहस मुबाइसा कर रहे हैं, आप बदजुबानी कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे हो, वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे हो, जिस तरह की हरकतें हो रही हैं जिसकी भी जानिब से हो रही हैं और जिसके ऊपर भी हो रही हैं, नफरत आई थिंक इज द कोर, इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ दिस. सो मैं आपसे जानना चाहती हूँ आप क्या समझते हैं कि कोर इशू यानी फंडामेंटल इशू यानी बुनियादी वजह क्या है जिसकी वजह से एक मेहमान नवाज मुल्क, पाकिस्तान जैसा मेहमान नवाज मुल्क, एक नफरत से भरा हुआ मुल्क और नफरत से भरे हुए लोग जो है, ये चेंज कैसे आया है किस एक बुनियादी वजह की वजह से. और जरूरी नहीं कि एक ही वजह हो, लेकिन आपके दिमाग में जो पहली वजह आती है कि अच्छा ये हुआ जिसकी वजह से, और ये हुआ मीनिंग सवाल का दूसरा हिस्सा है, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट, व्हाट डू यू थिंक वाज द टर्निंग पॉइंट बिकॉज ऑफ व्हिच अ फंडामेंटल इशू गेव राइज टू अ हॉस्पिटेबल नेशन लाइक पाकिस्तान टर्निंग इनटू वन विद सो मच हेट. दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी Mornings with Salmeen ke saath. You can continue tweeting on my Twitter handle. That's with an SULMEEN. I'm not feeling all that wonderful today, but I wanted to make sure that I came to do the show. So I look forward to your jawabat. What do you think is the core issue because of which a hospitable nation like Pakistan has turned into one with so much hate? What was the turning point? Kya wajah thi? Kya point tha jiski wajah se ek aisi bunyadi wajah jiske bina pe ek mehman nawaz mulk Pakistan jaisa ek nafrat se bhara hua mulk aur Pakistani mulk jo hai log hain wo nafrat se bhare hue ho chuke hain kis wajah se? Kya ek koi daur aaya tha aisa ya you know ek generational change tha ya awareness thi? Kya tha? What was it? Hashtag kijiyega apne jawab ko coffee mornings with Salmeen ke saath. You can continue tweeting on my Twitter handle, and that's with an SULMEE. And government toughens stance on isolated Imran but leaves room for dialogue. Leaves room for dialogue? What room? From what I saw in the programs yesterday on television, there's not much room. But anyhow, Twitter adds crowdsourced fact checks to images. Achha, interesting. Australia says tougher laws needed on artificial intelligence. Meta threatens to yank news content from California over payments bill. Achha, isko to hum filhal side pe kar dete. Lekin Australia ne kya kaha hai in terms of tougher laws on artificial intelligence? Is pe time ho to bilkul nazar dalenge. Other than that, what's happening around the world and what's happening in Pakistan, kuch cheezein bade aista aista khul rahi hain. So let's head towards some mosiqi. And I'll be back after this with lots more. Filhal ke liye, good morning Pakistan. Ek story hai jo ki hamare mulk ki nahi hai, lekin ye mere khayal mein duniya ki story hai. Duniya ki story isliye because jahan kanoon ki taraf hum badhte hain aur haath phailate hain ki insaaf mile, wahan kabhi kabhi aise faisle ho jate hain jo ki kisi ki jaan bilkul zindagi badal dete hain, jaan leva ho sakte hain. तारीख को जो है वो चेंज कर देते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो एक 14 साल का लड़का था, उसका नाम था जॉर्ज स्टिनी, अफ्रीकन अमेरिकन सयाफाम था. एंड उसको अक्यूज किया गया था, उस पर इल्ज़ाम था कि उसने 14 साल की उम्र में एक 11 साल और एक 7 साल की सफ़ेद रंगत की दो लड़कियों को कत्ल किया था, जो कि हो सकता है. अच्छा, बाहर के ममालिक में, बाहर यानी के काफ़ी सारे वेस्टर्न नेशंस में, पाकिस्तान में भी है लेकिन कम है, जुवेनाइल डिलिंक्वेंट्स या जुवेनाइल प्रिजनर्स की जो बात होती है, यानी कम उम्र जब इस तरह की कोई अगर कोई केस होता है तो उनका जेल अलग होता है, उनको तरीका ट्रीट करने का थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है. बिकॉज इतनी कम उम्र में जब कोई इतना अगर कोई बड़ा काम, बड़ा यानी बुरा काम कर जाता है, ऐसा कोई हीनियस एक्ट हो जाता है, तो और ज्यादा फिक्र की बात इसलिए होती है बिकॉज वो दिमाग इतना यंग होता है कि उसको इतनी नफरत इतनी यंग एज पे कैसे आई कि उसने किसी को मारा या पीटा या स्टैब किया या मर्डर कर दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा. एनी हाउ, उसको अक्यूज किया गया था, ठीक है, और उसको सेंटेंस कर दिया था, और उसको 5380 वोल्ट के शॉक के साथ एक इलेक्ट्रिक चेयर में शॉक दे के मार दिया गया था. 70 साल बाद 2014 में उसकी इनोसेंस के वो बेकसूर था वो साबित हुई. 70 साल लग गए, तो कभी कभी बहुत तवील अरसा लग जाता है. द रीजन व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस अप इज नॉट जस्ट दैट इट्स रेलेवेंट टू अ लॉट ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन आवर कंट्री, बट आल्सो कभी कभी सच तक पहुंचने के लिए मेरा एटलीस्ट ये यकीन है कि इस दुनिया में ही बहुत कुछ जो है वो नजर आ जाता है, बेनकाब लोग हो जाते हैं. वक्त की बात है, वक्त वक्त की बात है कहते हैं ना, कभी वक्त किसी की तरफ होता है कभी किसी की तरफ, लेकिन जो हक और बातिल का जो एक, एक जो जंग है वो क्या बोलते हैं, हाँ, वो हमेशा मुश्किल होती है. इट्स ऑलवेज एन अपहिल प्रोसेस. एंड वेदर वो आपकी अपनी जाती निजी जिंदगी में हो, वेदर वो आपके काम से रिलेटेड हो या मुल्क के हालात से रिलेटेड हो, आई थिंक फेथ रखना बड़ा ज़रूरी होता है. इख्तलाफ़ राय में कल एक और चीज़ मेरी नज़र से गुजरी और मुझे हमेशा ये होता है कि लोग इख्तलाफ़ राय ज़रूर रखना चाहिए. लोग किसी वजह से ये एक शख्स या एक ग्रुप ऑफ पीपल किसी एक को बहुत सही समझेंगे और दूसरों को बहुत गलत समझेंगे, लेकिन जहाँ पे नफ़रत आ जाती है और ज़ुबान को इस तरह गलीज तरीके से इस्तेमाल किया जाता है या वक्त को और एनर्जी को सर्फ किया जाता है कि गुफ्तगू हो, तो सिर्फ हो किसी को ऐसी चीज़ें शेयर करने में जिसमें नफरत जो है वो आप फैला रहे हैं. तो मेरी एक मेरी टाइमलाइन पे वो क्यों चीज़ आई मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे लिसनर्स बहुत डिफरेंट कस्म के हैं, डिफरेंट उनके ओपिनियंस होते हैं. पॉलिटिक्स के हवाले से भी अगर बात करें तो कोई किसी रुझान किसी की तरफ है, कोई किसी की तरफ. लेकिन एक आध ऐसे लोग होंगे, मतलब हमेशा ही होते हैं, लिसनर्स हैं जिनको वो जब कोई चीज़ अगर लिखते हैं या मेरे सवाल पे ही कोई या रीट्वीट करते हैं, अब बिकॉज वो इंटरैक्ट करते हैं, एल्गोरिथम गालबन ट्विटर का ऐसा है जो कि अगर आप नहीं भी फॉलो किसी को कर रहे हो लेकिन उसने आपसे फ्रीक्वेंटली इंटरैक्ट किया हो, तो अगर वो कोई चीज़ रीट्वीट करता है या ऐसी कोई चीज़ ट्वीट करता है जिस पर बड़ी इंगेजमेंट उसको मिलती है तो वो आपकी टाइमलाइन पे भी आ जाती है. तो ये पहले भी हो चुका है, रिसेंटली भी हुआ कि मुझे देखने को मिला कि अगर वक्त अच्छे पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोग सर्व कर रहे हैं नफरत फैलाने के लिए बिकॉज उनकी राय डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट मे बी द जनरल पॉपुलेशन मे बी फीलिंग अबाउट द सिचुएशन इन पाकिस्तान राइट नाउ, तो थोड़ा सा अफसोस हुआ. दिस इज नॉट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, दिस इज यूजिंग योर टाइम टू ओनली एंड ओनली प्रमोट एंड प्रोपगेट समथिंग विच इज फुल ऑफ हेट. ठीक है, अगर कोई अफसोसनाक वाकया है या वाकयात इतने सारे, इतनी सारी चीजें हमारे मुल्क में हो रही है, उसको अगर आप प्रमोट नहीं उसके बारे में बात कर रहे हैं या रीट्वीट कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं आवाज उठाने के लिए कि देखें ये जाती हो रही है, ये जुल्म व जबर है, ये यू नो इसके हवाले से, दैट इज समथिंग डिफरेंट. या कोई एक आप फर्ज करें किसी एक अलायंस को या किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं कि उन्होंने ये काम किया, कोई भी आप किसी भी साइड ऑफ द यू नो तराजू पे हो, डजंट मैटर, अंडरस्टैंड दिस. Nobody is objecting to, well, objection हो भी सकती है, बट मैं at least object इस बात पे नहीं करूंगी कभी भी कि आप इस साइड पे क्यों हैं. I'll ask you, अच्छा अपनी reasons बताइए. लेकिन जिस भी साइड पे आप हैं वहां पे instigation जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो एक बड़े अफसोस की बात होती है. इतने मतलब इतनी अच्छी एनर्जी आपके पास, इंटेलिजेंस, ब्रिलियंस, सहूलत, वक्त, मौका है, लेकिन इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे. खैर, ये जो मैंने आपसे एक African Hub एक हैंडल है उसमें उन्होंने ये शेयर किया था. अब वेदर दिस इज ट्रू और नॉट, ये जो कहानी इस बच्चे की है, लेकिन इट्स वेरी वेरी रिलेटेबल. ठीक है, टू अंडरस्टैंड एंड द स्टोरी आल्सो गोज के इट टुक अ ज्यूरी ऑफ 12 वाइट मैन, 12 सफेद रंगत वाले मर्द, जिनको 10 मिनट लगे और उन्होंने उस बच्चे को जो है वो गिल्टी करार दे दिया था. His siblings claimed that he had an alibi at the time of the murder. He was with his sister Amy watching the family's cow. So, puri ye kahani unhone share ki hai. Ab, the reason why this is relatable is jo humne pichle America mein se afam logon ke saath jo cheeze hote hue, you know, sadiyon se ye chala aa raha hai. Lekin pichle 5 saal mein jo again there's been an eruption of unfortunate incidences jahan pe se afam logon ko target bahut zyada kiya gaya hai. And फोर्सेस के लोग जो हैं वो अपने हाथ में चीजें लेते हुए अमेरिका में यू नो पुलिस ऑफिसर्स एंड ऑल दे हैव किल्ड पीपल बिकॉज उनको शक था, देखा नहीं था कुछ भी, शक था कि शायद ये कर रहा है. एनीहाउ, तो दिस इज अ रियलिटी ऑफ लाइफ. पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लायक, बहुत सारी ऐसी चीजें अगर इर्द गिर्द हमारे हैं जो कि हमें यू नो दिल बर्दाश्त कर रही हैं. तो एक चीज ये जिससे शायद आपके मुंह पर मुस्कुराहट आए, पाकिस्तान की जूनियर एशिया कप में जो शामिल होने वाली हमारी टीम थी उनको सिल्वर मेडल मिला, फाइनल तक पहुंचे, दे गेव इट देयर ऑल. सो कंग्रेचुलेशंस टू टीम पाकिस्तान फॉर विनिंग द सिल्वर मेडल इन द मेंस जूनियर एशिया कप हॉकी 2023. सवाल आज का दोहराए देती हूँ कि आप क्या समझते हैं कि कौन सा ऐसा मोड़ था, पॉइंट था, जिस पे और किस वजह से, किस बुनियादी वजह से एक मेहमान नवाज मुल्क, पाकिस्तान जैसा मेहमान नवाज मुल्क, एक नफरत से भरे हुए मुल्क की शक्ल जो है वो अब ले चुका है. वो वक्त कौन सा था या वो दौर कौन सा था, वो यू नो हालात कौन से थे और वो वजह क्या थी, वजह क्या बनी. एक पर्टिकुलर एक्ट भी आपकी राय में हो सकता है, कोई दौर भी हो सकता है, कोई इंसिडेंट से ट्रिगर हुआ हुआ एक फेज हो सकता है. एनीथिंग एट ऑल हैशटैग की जगह अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. कमिंग अप इज द टॉप ऑफ द आवर, दैट वाज क्वाइट अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट. आज का दोहराई देती हूँ. आप क्या समझते हैं कि फंडामेंटल इशू, बुनियादी वजह क्या है जिसकी वजह से पाकिस्तान जैसा मेहमान नवाज मुल्क नफरत से भर चुका है? किस पॉइंट पे ये हुआ, किस दौर में हुआ, किस प्राइमरी वजह से हुआ, प्राइमरी वजह से? यू कैन लेट मी नो, हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. मुलाकात होती है 10 बजे के बाद. स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूँ सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4. अच्छा जी, वेरी इंटरेस्टिंग. शुक्र है कि ऐसा भी है. वही बात है ना कि आपके लिए जो इम्पोर्टेंस, जो चीज अहमियत रखती है, जो चीज आपके लिए इम्पोर्टेंस रखती है, आप फिर उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेते हैं. तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है ऐसे लोगों की कॉन्वर्सेशंस को फॉलो करना. फॉलो मीनिंग सोशल मीडिया के अगर हवाले से बात करूं, जो कि ऐसी चीजों के बारे में गुफ्तगू कर रहे हों जो कंस्ट्रक्टिव हो, उनका अपना तजर्बा हो. कंस्ट्रक्टिव यानी कि मवाद या मुद्दा ऐसा उनका हो जिसमें आपकी एनर्जी, आपका टैलेंट, आपका हुनर, आपकी स्किल, आपके थॉट्स जो हैं वो प्रोवोक हों, आपको आइडियाज आए, यूटिलाइज पॉसिबली हो सकें, जो मिसाल कायम करें. और ऐसे लोग जो कि वो भी उतना ही मुतासर हो रहे हैं केओस से जितना हम आप हो रहे हैं, ठीक है, इर्द गिर्द. लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी पीपल. सो ऐसे लोगों के अकाउंट्स को, ऐसे लोगों को सोशल मीडिया पर फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. अगर इफ यू, मैंने भी किया है, आप लोगों ने भी किया होगा. अपने आप को जो है वो अपना ध्यान बटाने के लिए इंसान बहुत सारी ऐसी चीज़ें फॉलो कर रहा होता है जो कि यू नो हंसी मजाक वाली चीज़ें होती हैं, या कभी कभी यू नो सनसनीखेज भी हो सकती हैं, एंटरटेनमेंट रिलेटेड हो सकती हैं, पॉलिटिक्स रिलेटेड हो सकती हैं. लेकिन जो चीज़ें कॉन्स्टेंटली हमें, हमारा सिर्फ ध्यान बांट रही होती हैं, हमारी एनर्जी यूटिलाइज करने पर हमें यू नो मोटिवेट नहीं कर रही होती हैं, तो देन वी आर रिस्पॉन्सिबल. अगर मुल्क के हालात ऐसे हैं और हमारी जिंदगियां हमें बड़ी नॉमिनल सी या नॉर्मल सी लगती हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर यू नॉट डूइंग, नॉट व्हाट यू आर डूइंग. यू आर नॉट फॉलोइंग और टॉकिंग टू पीपल जो कि उतना ही इन्फ्लुएंस हो रहे हैं जितना आप हो रहे हैं, बिकॉज वो उसी एनवायरमेंट में रहते हैं. लेकिन अपना फोकस उन्होंने इतना रखा हुआ है कि वो ना सिर्फ अपना काम बिल्डअप कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, बट इर्द गिर्द के लोगों को भी इंस्पायर कर रहे हैं. ऐसे लोग ढूंढिए, वेदर इट्स ऑन इंस्टाग्राम, वेदर इट्स ऑन लिंक्डइन, वेदर इट्स ऑन ट्विटर, ऐसे लोग मौजूद हैं. व्हाट आर थिंग्स दैट एक्साइट यू? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको मोटिवेट करती हैं? चले मोटिवेट तो बड़ा ही एक बहुत ही शुगर कोटेड लव्ज है ना, जो आप जिनमें आपको दिलचस्पी है. इज इट डिजिटेक? Is it digitech? Carry on, digital financing, different digi fintech. Is it sports? Is it esports? Is it gaming? Is it just entrepreneurial ventures in general? क्या चीज़ है? Is it literature? ऐसे हर उम्र के लोग मौजूद हैं जो कि बाहर अगर you know पटाखे, मैं हल्का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, भी फट रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनका दिल नहीं दहल रहा होता है, उनका दिल ख़राब नहीं हो रहा है, या वो उन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाते नहीं हैं. लेकिन चूंकि ज़्यादा लोग ऐसी चीज़ों से रिलेटेड बहुत कुछ बार बार ट्वीट रीट्वीट ट्वीट रीट्वीट ट्वीट रीट्वीट और यू नो बहुत ही फजूल किस्म की कॉन्वर्सेशंस भी कभी कभी सामने आ जाती हैं, वो ला रहे होते हैं, तो ये लोग फिर किसी एक कोर कॉम्पिटेंस को लेके या किसी एक पर्टिकुलर यू नो करियर पाथ से रिलेटेड या किसी एक स्किल सेट से रिलेटेड या यू नो थॉट प्रोसेस से रिलेटेड गुफ्तगू करते हैं, ट्वीट्स करते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट बनाते हैं. इंटरनेशनली तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो कि बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से यू नो साइंस, साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, हीलिंग, मेंटल हेल्थ, मेकिंग अ बेटर लाइफ फॉर योरसेल्फ एटसेट्रा एटसेट्रा करते हैं. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खुद पोस्ट बनाते हैं, और वो खुद पोस्ट बनाते भी हैं, वो पॉडकास्ट भी कंडक्ट करते हैं, वो यू नो क्या कहते हैं कोर्सेज भी डिजाइन करते हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं. बट लोकली भी ऐसे लोग मौजूद हैं. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, बिकॉज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी दो तीन ऐसे नाम मौजूद हैं जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं और यूजुअली इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर करते हैं, उनसे रिलेटेड बात भी करते हैं, बड़ी डिटेल्ड वीडियोज भी बनाते हैं. बट मैं उनको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो मल्टीपल काम कर रहे हैं. कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपनी एनर्जी को ज्यादा सर्व करते हैं यू नो डेवलपमेंट स्किल इस तरह की चीजों से बात करने के लिए. प्लीज ढूंढिए ऐसे लोगों को. कब तक अपने दिमाग को एक ड्रेनेज की तरफ ले जाते रहेंगे कि कॉन्स्टेंटली आप नॉन स्टॉप अगर हाई कितने खराब हलाते हैं, हाई कितने खराब हलाते हैं, हाई कितने खराब हलाते हैं, इस वाले जोन में अगर रखेंगे तो कब आप आगे बढ़ेंगे? और अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो कल को अगर हालात बेहतर होंगे तो आपने ये सारा वक्त जो आपके पास था उसका क्या किया परेशान होने के अलावा, या आपने आपको यू नो सपोजिटली डिस्ट्रैक्ट करने के अलावा? व्हाट डिड यू डू? देयर इज अ न्यू सॉन्ग, देयर इज अ न्यू सॉन्ग आउट बाय आसिम अजहर एंड शे गिल. आई थिंक ये पर्सनल रिलीज हुआ था. इट्स कॉल्ड बुलिया. होपफुली विल बी प्लेइंग इट सून. ऑल्सो आई लुक फॉरवर्ड टू इट. ऑल्सो द सॉन्ग लेफ्ट राइट नाम है ना इसका. इट्स अ प्रिटी प्रिटी नीट सॉन्ग एंड आई थिंक इट्स डूइंग प्रिटी वेल ऑन द charts also. Yeah, left right by. इसमें बहुत सारे amazing लोग हैं ना. इसमें चार बहुत जबरदस्त किस्म के लोग हैं. अली सेठी, शेगिल, अब्दुल्ला सिद्दीकी एंड मनु, who is apparently very popular with Gen Z and Gen Alpha, as I learned a couple of days ago. On also, क्या मैं बात कर रही थी? या मैं I've been playing कुछ अरसे से, क्योंकि हमारे पास library में नहीं थे. मैं पहले खुद सुन चुकी थी, लेकिन कभी कभार हमारे पास चीजें जो थोड़ा टाइम लेके आती हैं. हसन एंड रोशन के गाने जो हैं, दे आर वेरी वेरी कूल एंड आई बीन लिसनिंग टू देम मोर फ्रीक्वेंटली पिछले कुछ अरसे से. एंड आई बीन प्लेइंग अ कपल ऑफ देयर सॉन्ग्स आल्सो. लेकिन कल मैंने उनका एक गाना सुना जो कि आई होप कि हम अपनी प्लेलिस्ट में जो नया नहीं है, बट इट्स अ रियली नाइस सॉन्ग. इट्स रिलेटेड टू पाकिस्तान. तो आई थिंक वही कुछ माहौल ऐसा था, बाई चांस मैंने वो प्लेलिस्ट लगाई हुई थी ऑन माई फोन, जिसमें वो गाना भी आया. एंड आई नॉट हर्ड इट बिफोर. एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन द सॉन्ग इज कॉल्ड दिया चले, आई थिंक. हैंग ऑन वन सेकेंड, अभी बताती हूँ मैं आपको. इट्स कॉल्ड दिया जले. या इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग. है पाकिस्तान से रिलेटेड और उसमें पाकिस्तान ही वर्ड सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, बट द नेम ऑफ द सॉन्ग इज नॉट पाकिस्तान. द नेम ऑफ द सॉन्ग इज दिया जले. आई थिंक यू गाइस शुड लिसन टू इट ऑल्सो. हैप्पी बर्थडे टू मोहम्मद रिजवान. 31 साल के हो गए हैं ऑफिशियली. आज उनकी कल सॉरी उनकी सालगिरह थी. उसके अलावा व्हाट्स ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर, मुराद सईद, एस्टैब्लिशमेंट, पठान, दीपिका, कैनवा, फ्री आदिल राजाज मदर. उनकी वालदा को क्यों उठा के ले गए भाई? क्या ये बेवकूफ़ी है. मंशा पाशा इज ट्रेंडिंग बिकॉज जिब्रान नासिर हैज बीन अबडक्टेड. ऑल्सो उनकी बेगम उनके साथ थी. ये लोग खाने से वापस आ रहे थे. उन्होंने जो वीडियो पोस्ट की है, मंशा इज अ वेरी वेल नोन एंड वेरी टैलेंटेड एक्टर फ्रॉम द यू नो मीडिया फ्रटर्निटी. आई नो हर थ्रू द फ्रटर्निटी, यू नो ऑन अ पर्सनल लेवल. ऑल्सो आई हैव मेट जिब्रान नासिर ऑल्सो. बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत सारे लोगों को उनसे बहुत सारे इख्तलाफात होंगे, लेकिन ये बात कोई नहीं डिनाई कर सकता कि जहाँ वो लाइक सो मेनी अदर पीपल, 10,000 पॉलिटिशियंस होंगे जो किसी एक ग्रुप को पसंद होंगे, 10,000 होंगे जो किसी और ग्रुप को पसंद होंगे, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि वो जो ह्यूमन राइट्स के लिए जो काम करते हैं, जो मोस्ट रिसेंट उन्होंने केस जो लड़ा था, दैट वॉज दुआ जहरा वाला जो केस था, नोबडी कैन फॉरगेट दैट. जिस तरह उन्होंने दुआ जहरा के फादर के साथ कंसिस्टेंटली जो है वो मिल के वो केस को लड़ा था, सो दैट शी कुड बी यूनाइटेड विथ, बिकॉज वो नजर उनको आ रहा था कि ये केस जो है बहुत ही मैनिपुलेटेड किस्म का केस है बाय सम वेरी स्ट्रेंज पीपल, काबिले तारीफ है. तो मैंने आपको शुरू में भी कहा, मतलब शो के पहले घंटे में भी मैं बात कर रही थी, इख्तलाफ राय हर एक की हर चीज के बारे में होती है. आपस में आपके भाई बहनों से हो सकती है, आपकी खुद अपनी जो एक राय एक दिन होती है चार दिन बाद बदल जाती है. नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए, बिकॉज हर एक इंसान एक जैसा नहीं है. ना हम रोबोट्स हैं, ना हम, शुक्र है, हम मशीन्स नहीं है. दैट इज द ब्यूटी ऑफ हु वी आर. बट एक ही इज नॉट इवन अ पर्सन जो के यू नो, जब ज्यादातर लोग जिनको अबडक्ट किया जा रहा है वो लोग हैं जो कि प्रो पीटीआई हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल जो कि उसका पीटीआई का हिस्सा है या व्हाट रिमेन्स ऑफ पीटीआई दाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल जो कि सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने किसी भी तरीके से आवाज उठाई है या मल्टीपल जलसों पे जाते थे या सोशल मीडिया पे वोकल थे, उनको भी उठा के ले गए. खवातीन अभी तक जो है वो अपने घर नहीं पहुंची हैं जो कि बड़ी एक्टिव वर्कर्स थी. इनको उठाने का मुझे समझ नहीं आया कि इनको किस वजह से उठाया गया है. हाँ, एक वजह मैं समझ सकती हूँ जो कि शायद बहुत सारे और लोग भी समझ रहे हैं, बट दिस रियली डिड नॉट मेक एनी सेंस. सो दैट इज व्हाई मंशा पाशाज नेम इज ट्रेंडिंग. अदर देन दैट वेरी इंटरेस्टिंग, टिकटॉक इज ट्रेंडिंग. उसके अलावा लवली इज, व्हाट इज लवली, जरदारी साहब का नाम ट्रेंड कर रहे हैं बिकॉज ही इज गॉन टू काइंड ऑफ पोच पीपल हु हैव लेफ्ट PTI. अभी भी बिहाइंड यू स्किपर इज वन थिंग विच इज ट्रेंडिंग विद 114,000 ट्वीट्स. इंटरेस्टिंग, पाकिस्तान अंडर सीज एंड गॉर्जियस. ये लवली और गॉर्जियस कहां से आ गया यार इतनी कशीदगी के दरमियान? ये कहां से ट्रेंड करे पाकिस्तान यू, मतलब मुझे जरा समझाओ. अदर देन दैट, आज का जो सवाल था, आय अल्लाह कितना फनी जिफ शेयर करते हैं कुछ लोग ना, कुछ लोग क्या, हमारे एक जो लिसनर खास तौर पे, दिस इज हिलेरियस. आपका सीरियस ऊपर जो जितना जवाब है, मैंने इंटीरियर टॉयलेट वाला जिफ देख रही हूँ. आज का सवाल था, आप क्या समझते हैं कि टर्निंग पॉइंट क्या था जिसकी वजह से पाकिस्तान जैसा मेहमान नवाज मुल्क नफरत से भरपूर हो चुका है? इतनी नफरत किस एक बुनियादी वजह से ज्यादा उभर के सामने आई है और किस मोड़ पे ये जो है वो ज्यादा वाजे होना शुरू हुई थी या नुमाया होना शुरू हुई थी? दैट इज व्हाट आई आस्क यू. आपके जवाब आ चुके हैं, शामिल करती हूँ इसके बाद, स्टे ट्यून्ड. अच्छा, इससे पहले कि संजीदा चीजों की तरफ दोबारा जाया जाए, रुख किया जाए, और इससे भी पहले कि ये जो मैं अभी आर्टिकल की समरी आपसे शेयर करने वाली हूँ, उससे भी पहले मुझे ये बताएं कि 3D मूवीज की प्राइस 1800 रुपए कब हुई भाई? Somebody tell me this. In Islamabad, I looked up the prices of a 3D film because I wanted to go and watch jo Fast and the Furious ki nayi film aayi hai. 1800 rupees plus 50 rupees. Allah jaane wo kis cheez ke liye, not tax, pata nahi kar, I don't know, it's called reservation fee ya kya fee ya kaun si fee. This is inclusive of the glasses, but then you go and you order something to eat also, right? So why would you price it in such a way? Anyways, people have started going less. I don't believe ke mehngai ki wajah se cafes or restaurants mein log jaate hain, but movie buffs jo hain wo, you know, unless jo log afford kar sakte hain, wo theek hai, unke liye fark nahi itna padta. But standard was, 2D was 1000 rupees, jo ke ek time pe 500 hota tha, pe 600 hua, chalo 750 hua, now it's 1000 rupees. Ab angrezi film ke liye 1000 rupees tha. And 1850 rupees per person. I was like, I'm not going to go and watch. वो भी 3D. अगर चलो Mission Impossible होती तो शायद मैं सोच लेती. ठीक है, Tom Cruise की फिल्म है. But Fast and the Furious का 3D version for 1800 rupees, I don't think so. Anyhow, so this is just, अगर आप लोगों को भी नहीं मालूम है तो 3D movies की prices, generally movies की prices काफी महंगी हो चुकी हैं cinemas में. And कंप्लीट कमबैक वैसे भी फिल्म्स ने नहीं किया, दो तीन वजूहात से. पड़ोसी मुल्क के जो फिल्म्स हैं वो बैन हो गई. ठीक है, पाकिस्तानी फिल्म्स जो हैं वो वैसे ही लिमिटेड बनती हैं. ईद पे रिलीज होती हैं, उमूमन एक ईद पे होती है, एक यू नो दूसरी ईद पे, मतलब एक ईद पे दो तीन होती हैं, दूसरी ईद पे दो तीन होती हैं. कभी कभी होता है न्यू ईयर पे कोई रिलीज हो जाती है, बिकॉज वो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं है. प्लस कोविड आया था, तो कोविड आया था तो देयर वाज लिटरली, एक तो लॉकडाउन जब खुल भी गया था, बहुत अरसे तक खैर सिनेमाज जो है वो जस्ट लाइक बैंक्वेट हॉल्स, उन पर रिस्ट्रिक्शन थी. लेकिन उससे कुछ अरसा पहले और उसके कुछ अरसे बाद तक भी जब चीजें ओपन हुई, देयर वाज नॉट इनफ फिल्म्स टू शो. सो अगर शो करना शुरू की है, आई ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड दैट देयर इज, you know, there's a whole lot of expenditure that goes into not just production and then leasing and then jo या क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज होती हैं, उनके चार्जेस होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट दिस इज स्टिल क्वाइट रिडिकुलस. अच्छा चले, इस टॉपिक से रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज क्या क्या है, मैंने आई थिंक पिछले हफ्ते भी शेयर किया था थोड़ा बहुत. एक रिव्यूअर है, उनके मुताबिक व्हाट आर द फिल्म्स वर्थ वॉचिंग इस साल, द बूगी मैन, ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट, एलिमेंटली, उसके बाद द फ्लैश. स्टैन ली पे ही मूवी बनी है If you don't know who Stan Lee is, please go look it up. I'm not going to spend time explaining who the legend was. I think jo log jante hain, jo ke movies dekhte hain, Marvel ki, wo samajhte honge. But jo nahi samajhte hain, wo jaake dekh lijiye what a legend he was. Uske alawa No Hard Feelings, then Ruby Gilman Teenage Kraken. Hai? Ye Little Mermaid se inspired hai shayad. उसके अलावा है जी इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी, जो कि मैंने जब पहले शेयर किया था कि इस साल आ रही है, आई वाज लाइक ये पुरानी वाली इंडियाना जोन्स है, नई वाली इंडियाना जोन्स है, कौन सी है? सो इट्स गोइंग टू बी फिफ्थ एंड फाइनल आर्कियोलॉजिकल एस्केपेड, क्या 20-30 साल बाद इन्होंने बनाई है एक इसका सीक्वल. उसके बाद है जी वॉर पोनी, इट लुक्स लाइक एन वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म. देन देयर इज स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स. देन देयर इज एस्ट्रॉइड सिटी, जो कि वेस एंडरसन की मूवी है. अब जो लोग वेस एंडरसन को नहीं भी जानते थे, उनकी मूवीज नहीं भी फॉलो करते थे, जो इंस्टाग्राम पे रील ट्रेंड चला था ऑफ नॉट थिंकिंग दैट यू आर इन अ वेस एंडरसन मूवी, और लोगों ने बहुत सारी उसकी बहुत अच्छा एडवांटेज लिया था और बहुत मजे मजे की चीजें बनाई थी. सो उनको भी पता चल गया, जिनको नहीं पता था, और जिनको पता था उनको वैसे ही पता, यू नो, एंगेज होने का एक मौका मिला था इन दैट काइंड ऑफ ट्रेंड. सो या वेस एंडरसन की नई मूवी इज एस्ट्रॉइड सिटी एंड दैट्स अबाउट इट. और भी बहुत सारी मूवीज हैं, कुछ ऑलरेडी रिलीज हो गई हैं, मिशन इम्पॉसिबल इज ऑल्सो वन ऑफ देम इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो एंड देन फास्ट एंड फ्यूरियस वाली भी रिलीज हो गई. अच्छा जी, कल मुझे नहीं पता था कि इन्होंने भी प्रेसर कल दे दिया है, क्या नाम है, परवेज खटक साहब का. सो या उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने भी वही बोला है क्या जो सारे बोल रहे हैं. चले कोई बात नहीं, मैं बाद में इसको फॉलो अप कर लूंगी. आज के सवाल के हवाले से आपका जवाब, आपके जवाबात, शेख इनका नाम है, अच्छा KHD शेख कहते हैं द ट्रूथ रिवील्स वेरी लेट, यानी सच बहुत बाद में पता चलता है, जिसकी वजह से लोग इतने मेहमान नवाज पाकिस्तान में होने के बावजूद अब नफरत जो है वो उनके ऊपर तारी हो चुकी है. ZX कहते हैं डेकेड लॉन्ग ओप्रेशन, यानी बहुत तवील अरसे से लोगों को दबाया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म व ज़ाती की जा रही है, तो लोग अब नफरत से भरपूर हो गए हैं बिकॉज अब आवाज़ उठाना शुरू कर दी है. मैं इसको आगे खुद ही एक्सटेंड कर रही हूँ. यासिर जी खान कहते हैं लॉस ऑफ होप, उम्मीद नहीं है, नाउमीदी है. तो नाउमीदी का मतलब होता है कि इंसान नफरत से भर जाए. चले ओके, आई एम नॉट सेइंग राइट और रॉन्ग, आई एम जस्ट आस्किंग. AB42 कहते हैं गुड मॉर्निंग, कहते हैं सब इनसिक्योरिटीज की बात है, कि जाती हो, फाइनेंशियल हो, जहनी तौर पे हो, सोसाइटल हो या फ्यूचर की हो. नॉट ओनली वन बट एवरी वन ऑफ अस एंड द पीपल वी हैव बीन सेलेक्टिंग फॉर द लास्ट 76 ईयर्स आर रिस्पॉन्सिबल, यानी हम सब भी जिम्मेदार हैं, जिन लोगों को हम सेलेक्ट करते रहे वो भी जिम्मेदार हैं. हमें सबको अपने हकूक चाहिए बट हमें अपनी जाके ड्यूटीज नहीं परफॉर्म करनी है. तो आप समझते हैं कि इनसिक्योरिटी की वजह से सबसे पहले कि इसलिए नफरत आती है. इनसिक्योरिटी तो इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर एंड हैज बीन फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम, राइट? सो इनसिक्योरिटी जब बढ़ती है तो उसका एक फंडामेंटल रीजन होता है. फंडामेंटल रीजन क्या है, कोर इशू क्या है? आपने कहा इट इज ऑल अबाउट इनसिक्योर. व्हाट इज ऑल, एक बेस वजह बताते हैं ना आप कि इससे स्टेम हुआ है. आपने कहा कि जो सारे लोग हैं, तमाम लोग हैं, उन्होंने वो भी जिम्मेदार हैं और जिनको हमने सेलेक्ट किया वो भी जिम्मेदार हैं. किस चीज के जिम्मेदार हैं, क्या चीज उन्होंने, क्या चीज हम सब ने की और क्या चीज हम सब ने नहीं की, जो कि एक जड़ बनी, एक गढ़ बनी, एक यू नो, एक मेल्टिंग पॉट, एक गलत किस्म का मेल्टिंग पॉट बना जहां से ये सारी नफरत निकली है. देयर हैज टू बी अ कोर इशू. नाउ इफ दैट यू हैड शेयर्ड दैट वुड हैव बीन इवन मोर इंटरेस्टिंग, बट एज ऑलवेज थैंक यू फॉर योर आंसर एंड फॉर द जिफ ऑल्सो. आज के सवाल के का मकसद, एक तो थैंक यू फॉर योर जवाब, बात ये था कि हम आइडेंटिफाई करें कि शायद लोगों को लग रहा है, जैसे लोग कह रहे हैं होपलेसनेस की वजह से इतनी नफरत आ गई, तो होपलेसनेस भी क्यों आई, कब आई, किसकी वजह से आई. जितने लोग थे उनके सबके जवाब में एक चीज जो डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू नो इट्स ओपिनियन आई फेल्ट दैट इज मिसिंग इज, सभी सलीम ने कहा रिलीजियस एंड पोलिटिकल एक्सट्रीमिज्म, वो कहाँ से आई. फंडामेंटल यू नो इशू इज नॉट एक्सट्रीमिज्म, इट इज इट स्टेम्स फ्रॉम हु एंड वेयर. आइडेंटिफाइंग ये प्रॉब्लम कहां से और किस से शुरू हुई है. सो वट एवर योर आंसर इज देयर ऑल राइट आंसर्स, देयर इज नो रॉन्ग आंसर बिकॉज ये आपकी राय है, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है. मैं समझती हूं कि इतनी नफरत जो है वो किसी भी इदारे से रिलेटेड नहीं है, मुझे ये लगता है. आई थिंक वी आर जस्ट सो अपसेट विथ आवरसेल्व्स दैट इट इज कमिंग आउट. ये अगर एक मिनट के लिए आप इसको साइड पर रख लीजिए कि मुल्क में करंटली क्या हो रहा है, एंड गो एंड सर्च ऑनलाइन जाने माने पढ़े लिखे, नॉट यू नो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ फेक ट्रैक्शन, डिटेल में रिसर्च किए हुए, नॉट पावर हंगरी और नॉट फेम हंगरी यू नो स्पेशलिस्ट्स की वीडियोस जाके देखिए, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कंटेंट बना देते हैं दूसरी रिसर्च के बेसिस पे, बिकॉज वो पैगाम पहुंचाना भी चाहते हैं किसी चीज का आगे, लेकिन दे आर बेसिकली दे वांट टू ग्रो देयर पॉपुलैरिटी ऑल्सो. तो एक कोई भी ऐसी चीज होती है जो कि उनको, जिसको उनको रेलिवेंट दो तीन रिसर्चेस मिल जाती हैं, तो उससे रिलेटेड बहुत सारा कॉन्टेंट हमारे सामने आ जाता है. एनी हाउ, जाके देखिए और समझिए इस चीज को कि द ह्यूमन माइंड एंड हाउ इट वर्क्स, ह्यूमन बिहेवियर, एंड देन एक कल्चर किस तरह फॉर्म होता है, और एक कम्युनिटी में बिहेवियर्स और नॉर्म्स जो है वो किस तरह इवॉल्व होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. पीपल हु आर हैप्पी विद देमसेल्व्स, लोग जो अपने साथ खुश होते हैं, वो एनर्जी ज्यादा हमेशा सर्व करेंगे मुश्किल या अच्छा आसान हालात में अपने आप को और अपनी सोसाइटी को बेहतर करने में. हम बहुत अरसे से, शायद पाकिस्तान की शुरुआत से ही, हम बहुत ज्यादा अनफुलफिल्ड कस्म के लोग हैं. ये इस वजह से भी हो सकता है कि हम आसानियां चाहते थे, ये इस वजह से भी हो सकता है कि शायद बहुत सारे प्रोपेगेंडास हैं जो कि यू नो जिनकी हम लपेट में आ गए, लेकिन हम अनफुलफिल्ड अनहैप्पी एक नेशन के तौर पे जो है वो बढ़ते चले गए हैं, जिसमें एक सर्टन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी था जिन्होंने बैकबोन बनाई पाकिस्तान की, जिसमें आपने प्राइवेट सेक्टर, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, स्पोर्ट्स आर्टिस्ट्स, इन लोगों को देखा कि इसके बावजूद कि एक गरीब मुल्क था, छोटा मुल्क था, थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता था, बट हमने बहुत बेहतरीन किस्म के वक्त भी देखे और दौर भी देखे. 60s एंड 70s में इन टर्म्स ऑफ द आर्ट्स भी हमने डेवलपमेंट देखी है, 80s एंड 90s में इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक एंड स्पोर्ट हमने काफी हद तक डेवलपमेंट देखी है, बहुत सारी चीजें रिग्रेस भी की. उसके बाद इट बिकेम अ लॉट अबाउट रियल एस्टेट एंड लैंड एंड यू नो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, बट ये एक सर्टन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ही रही है जो टैक्स पेयर्स रहे हैं, जो फोकस रखते रहे हैं, जो अपने आप को भी यू नो डेवलप करते रहे हैं और बिजनेस बनाते रहे हैं, बट ये स्मॉलर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी थी. द रेस्ट ऑफ द वेरी बिग पॉपुलेशन जो कि मिडिल क्लास है, जिसमें लोअर मिडिल और अपर मिडिल क्लास को आप बाइफरकेट कर सकते हैं, दे हैव नॉट बीन हैप्पी पीपल, क्योंकि जो अपने आप से मुतमईन या खुश होता है वो एनर्जी सही चीजों में सर्व करता है, वो इतनी आसानी से भड़क नहीं जाता है, यू नो वो गलत रास्ते पे इतनी जल्दी उतर नहीं जाता. दैट इज वेयर रिलीजियस एंड अदर काइंड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म कम्स, तो खुद ही अपने आप से मुतमईन नहीं है तो जो चीज सनसनी खेज है और भड़कीली है उसकी तरफ लोग रागब हो जाते हैं. एंड देन देयर केम अ टाइम जब ये कॉमन होना शुरू हुआ, उसके बाद ये ईजी हो गया, और फिर यंगर एज से लोगों को इस चीज में इन्वॉल्व करके लोगों ने ब्रेन वॉश करना शुरू किया. वी आर नॉट हैप्पी विद आवर सेल्व्स, we're not happy with the choices we have made, we're not happy with the choices that the society which we constitute you know has put forward, and then extension obviously hoti hai about community and politics and country etc etc. And how can you learn to be happy with yourself? Come out of complexes. Complexes jo hai ke na, hum apni concepts ke complexes mein band ho jate hain, jaise क्या कहते हैं उसको, मुलजिम की तरह, गुलाम की तरह बंद हो जाते हैं कॉम्प्लेक्सेस में. आई डोंट थिंक आर कंट्री एंड आर नेशन, अ वेरी बिग पॉपुलेशन केम आउट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, एंड फिर चूंकि मैनिपुलेट करने वाले लोग हमेशा मौजूद होते हैं, तो मैनिपुलेटिव लोगों ने बा आसानी तो नहीं मैं कहूंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों को मजीद कॉम्प्लेक्स में डाला. तुम टाइटल नहीं है, तुम काबिल नहीं हो, मुसलमान नहीं हो तुम काबिल नहीं हो, अच्छा सुन्नी मुसलमान नहीं हो तो तुम काबिल नहीं हो, अच्छा तुम बलोची हो तो तुम ऐसे हो, और पठान हो तो ऐसे हो. लोगों को कॉम्प्लेक्सेस में डाल के बड़े इजीली उनके इमोशंस पे प्ले करके आहिस्ता 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 करके उनको इस तरह हेट जो है वो इतना, दैट इज हाउ आई फील दैट दिस हैज कम अक्रॉस. सिट एंड थिंक एंड अंडरस्टैंड, एक पोलिटिकल पार्टी या कोई एक इदारा नहीं रिस्पॉन्सिबल हो सकता है फॉर इवोकिंग हेट इन पीपल. इट इज An amalgamation of many, many, many things. लेकिन उसका कोर रीजन जिसके ऊपर शायद अगर फर्ज करें कि पॉलिटिशियंस ने या इदारों ने प्ले किया भी है, वो क्या है? That is complexes and making sure that people remain unhappy so that their happiness is also at the hands of the people who have made themselves more powerful. थिंक अबाउट इट. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड सायोनारा.